अभिमन्यु को सबके सामने इशिका की कंपनी को पब्लिक करने की बात रखनी थी। बातों ही बातों में पार्थ ने उन सबको बताया कि इशिका ही डॉक्टर अनामिका है। ये बात राधिका और वसुधा नहीं जानती थीं, लेकिन सच पता चलने पर वे दोनों काफी खुश हुईं। पार्थ यही चाहता था कि इशिका की कंपनी पब्लिक करते वक्त जब ये अनाउंस किया जाए कि इशिका ही डॉक्टर मर्चेंट है, तब उसके डॉक्टर अनामिका होने की सच्चाई भी सबके सामने रख दी जाए। परंतु अभिमन्यु इससे सहमत नहीं था। पार्थ ने अभिमन्यु को इस बारे में सोचने को कहा और फिर वो वहां से जाने लगा। उसे आगे अंजलि दिखाई दी। अभिमन्यु का नाम लेकर एक बार फिर पार्थ अंजलि को मैनिपुलेट कर रहा था। इस बार उसने अपने इरादे सीधे सीधे अंजलि को बता दिए थे कि वो इशिका के जरिए पूरे राजवंश फैमिली को एक बड़ा झटका देगा, खासकर अभिमन्यु को। पार्थ चाहता था कि अंजलि सबके सामने जाकर उसके इरादों को बताए और फिर एक बड़ा तमाशा हो। अंजलि को अच्छा खासा उकसाने के बाद पार्थ बोला, क्या हुआ मिस चौहान, हिम्मत नहीं हो रही अपने ही बेटे के ताने सुनने की? मेरी हिम्मत के बारे में अभी तुम्हें पता नहीं है डॉक्टर रायचंद। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, मैंने अभिमन्यु के साथ गलत किया। हाँ, उसकी बातें सुनकर गुस्सा आता है, पर उसका हक बनता है नाराजगी जताने का, और वैसे भी नाराजगी अपनों से ही जताई जाती है, गैरों से नहीं, अंजलि ने कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर पार्थ इम्प्रेस हुआ। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, आपके इस ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर तालियां बजाने का मन कर रहा है। वैसे अचानक 29 सालों बाद में आपके दिल में माँ का प्यार कैसे जाग गया? कहीं इसके पीछे भी कोई और इरादे तो नहीं छुपे हुए हैं? क्या मुझे भी अपनी तरह समझा हुआ है, जो लोगों से बात भी अपने मतलब के लिए करते हैं? मेरा कोई छुपा हुआ इरादा नहीं है और ना ही मुझे कुछ छुपाने की आदत है। खुलेआम यहाँ अपने बेटे के साथ रहूंगी और उसके दिल को बदल कर रहूंगी। ये मेरा चैलेंज है तुम्हें, अंजलि ने सख्त आवाज में कहा। फिर तो मुझे बेसब्री से इंतजार है, चलिए ना साथ में अंदर चलते हैं, पार्थ ने अंजलि को आगे का रास्ता दिखाते हुए कहा। अंजलि ने एक नज़र उसकी तरफ घूरकर देखा और फिर आगे जाने लगी। अचानक उसे वहां देखकर वसुधा ने गुस्से में तेज आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ, और तुम यहां क्यों आ रही हो? मैंने तुम्हें गेस्ट विला में कर्फ्यू हटने तक रुकने को कहा था, घर में किसकी इजाजत से घुस रही हो तुम? अंजलि को अभिमन्यु के अलावा किसी की परवाह नहीं थी। वो बेपरवाही से आगे आई और वसुधा की आंखों में देखते हुए पूरी हिम्मत के साथ बोली, कर्फ्यू हटने में टाइम लगेगा, दूसरा मुझे यहाँ काम निकल आया है। आपने कहा था कि यहाँ रुकने के लिए किराया दे देना, मुझे कम से कम 15-20 दिन यहाँ रहना पड़ेगा, मैं बिल पे कर दूंगी, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मैं यहीं पर रहूंगी। अंजलि की बेपरवाही देखकर पार्थ काफी इम्प्रेस हुआ। वहीं वसुधा को गुस्सा आने लगा। वो तेज आवाज में बोली, बेशर्मी की भी हद होती है, यहाँ मुफ्त में रह रही हो, ये कोई गेस्ट हाउस नहीं है जो पैसे दे दोगी और यहाँ रहने लगोगी, तुम्हारा इस घर से और इस घर के लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, जब रोकना चाहा तब तो तुम्हें यहाँ से जाने की लगी थी और अब यहाँ जबरदस्ती रहना चाहती हो, बिना किसी रिश्ते के मैं तुम्हें यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकने दूंगी। और आपको किसने कह दिया कि मेरे इस घर में कोई रिश्ते नहीं है? अभिमन्यु को मैंने पैदा किया है, वो मेरा बेटा है, इस हक से मैं यहाँ रह सकती हूँ और आप मुझे निकाल नहीं सकती हैं, अंजलि ने सख्ती से कहा। अंजलि की बातें सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। वो कड़वाहट भरे स्वर में बोला, अच्छा तो आपको याद है कि आपने मुझे पैदा किया था और मैं आपका सो कॉल्ड बेटा हूँ। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि लीगली हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से मेरे पेरेंट्स दादी और दादू हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल माँ हूँ, आज भी चाहूँ तो DNA रिपोर्ट के चलते तुम पर कस्टडी क्लेम कर सकती हूँ, अंजलि ने गुस्से में कहा। अब तो उसे अभिमन्यु के तानों और कड़वाहट का भी डर नहीं था। और आपको क्या लगता है मैं 2 साल का बच्चा हूँ जो आप मेरी कस्टडी केस लेकर कोर्ट में जाएंगी? जितने भी DNA टेस्ट या बाकी सबूत पेश करने हैं कर लीजिएगा, कोई रिश्ता नहीं है तो नहीं है, अगर है भी तो मैं नहीं मानता, अभिमन्यु अपनी जिद पर अड़ते हुए बोला। अंजलि जानती थी कि उसने जो फैसला लिया है वो आसान नहीं रहने वाला है, कोई और उसी के लिए मुसीबतें खड़ी करे या ना करे, लेकिन उसका खुद का बेटा अभिमन्यु उसे चैन से नहीं जीने देगा। अब उसने जो राह चुनी थी तो उसे सबकी बातें सुनने के लिए खुद को तैयार करना ही था। अंजलि आगे कुछ बोल पाती उससे पहले अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा, अगर आपका माँ बेटे और रिश्तों का ड्रामा खत्म हो गया है तो यहाँ से चली जाइए, यहाँ एक नॉर्मल डिजास्टर कर्फ्यू लगा हुआ है, अगर पूरी कंट्री को रेड जोन में भी बदल दिया होता फिर भी मैं आपको खुद से दूर करने का रास्ता निकाल ही लेता। ठीक है, फिर ट्राई करके देख लो, अंजलि ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। दोनों एक जितने ही जिद्दी थे। अभिमन्यु ने इरिटेट होकर अंजलि की तरफ देखा और फिर इशिका का हाथ पकड़कर कहा, हमें हॉस्पिटल जाना था ना, चलो यहाँ से चलते हैं, मेरे लिए यहाँ रुक रही है, तो मैं देखता हूँ कि मैं सामने ही नहीं आऊँगा तो फिर आपके यहाँ रहने का मतलब ही क्या रह जाता है। अभिमन्यु इशिका का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगा। अंजलि उसके पीछे जाना चाहती थी पर वसुधा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। क्यों कर रही हो तुम ये सब, मेरे बेटे को तकलीफ देने की सोच ली है क्या तुमने? अंजलि, इस बार मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने वाली नहीं हूँ, उस वक्त मेरे बच्चे को तुम्हारी जरूरत थी, इस वजह से मैं बार बार तुम्हें कॉल कर रही थी, लेकिन अब अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, वसुधा ने वार्निंग फिंगर दिखाते हुए कहा। पर अंजलि पर उसका असर कहाँ होना था। अंजलि बेपरवाही से वहां पर खड़ी थी। उसने एक नज़र वसुधा को देखा और फिर वहां से जाने लगी। वहीं इशिका और अभिमन्यु के निकलते ही पार्थ भी बाहर आ गया था। अभिमन्यु जब इशिका को लेकर घर निकल रहा था उसी वक्त पृथ्वी अभिमन्यु को पिक करने के लिए राजवंश विला आया था। अभिमन्यु ने पृथ्वी से कहा, आज मैं खुद ड्राइव कर लूंगा, तुम भी एक दिन का ऑफ ले लो, बस गार्ड्स की गाड़ी पीछे रहनी चाहिए, मैं इशिका को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सॉरी सर, आप किसी और टाइम चले जाइएगा, अभी एक क्राइसिस आ गया है जो आपको ही सॉल्व करना होगा, आपको पहले राजवंश एम्पायर चलना होगा, पृथ्वी ने सीरियस अंदाज में कहा। इशिका को हॉस्पिटल ले जाना भी जरूरी था, पर अभिमन्यु किसी भी हालत में राजवंश एम्पायर के काम को भी साइड में नहीं कर सकता था। पहले ही नकुल, प्रशांत, नक्श इतने लोगों के पोजीशन से हट जाने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गई थी। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा तो इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है, जब भी हम कहीं साथ जाने को होते हैं तुम्हें काम आ जाता है, तुम आराम से जाओ, मैं खुद डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। साथ में ही चलेंगे, ऐसा करो तुम भी मेरे साथ राजवंश एम्पायर चलो, काम खत्म होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल जाएंगे, अभिमन्यु बोला। नहीं अभिमन्यु, मुझे भी अपने कुछ कमिटमेंट्स पूरे करने हैं, तुम इतना बुरा मत फील करो, मैं हैंडल कर लूंगी, इशिका ने उसका हाथ थाम कर कहा ताकि अभिमन्यु को बुरा ना लगे। इसी बीच पार्थ उनके पास पहुंच गया था, वो बीच में बोला, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं इशिका को हॉस्पिटल लेकर जा सकता हूँ, वैसे भी मुझे लाइफ केयर हॉस्पिटल में विजिट करना ही था, मैं वहीं जा रहा था। अभिमन्यु को पहले ही पार्थ पर यकीन नहीं था, ऊपर से अंजलि की बातों के बाद उसके दिमाग में पार्थ के लिए शक कहर हो गया था। इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ कहता, इशिका ने कहा, देखो अब तो पार्थ भी जा रहा है और मुझे ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, वैसे भी मुझे पार्थ से बात करनी थी।
अभिमन्यु ने बिना किसी बहस के हाँ में सिर हिलाया और फिर इशिका के फॉरहेड पर हल्का सा किस करके कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर देना, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है और सारी रिपोर्ट्स पहले भेज दी है, बस तुम्हें टेस्ट करवाने हैं, और डोंट वरी, मैं भी साथ में रहूँगा, तो किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा, पार्थ ने मुस्कुरा कर कहा और इशिका को अपने साथ आने का इशारा किया। इशिका ने अभिमन्यु को बाय बोला। गाड़ी में बैठने के साथ ही इशिका ने पार्थ से कहा, मेरी रिसर्च 2-2.5 महीने में पूरी हो जाएगी और मैं पेपर्स तुम्हें हैंडओवर कर दूंगी, उसके बाद तुम मेडिसिन बनाने का काम कर सकते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनामिका, जिस दिन तुम मुझे पेपर्स दोगी अगले दिन ही मैं मेडिसिन बनाने का काम शुरू कर दूंगा, मेरी टीम तैयार है, पार्थ ने हल्के तरीके से कहा और फिर गाड़ी स्टार्ट की। कुछ ही देर में वे हॉस्पिटल पहुंच गए थे। पूरे रास्ते उनके बीच बस प्रोजेक्ट को लेकर की ही बातें चलती रही थीं। हॉस्पिटल में आते ही पार्थ इशिका को लेकर गायनिक के बोर्ड में पहुंचा। डॉक्टर किसी काम के चलते बाहर गई हुई थीं और उनकी जूनियर डॉक्टर ने आज ही ज्वाइन किया था। इशिका और पार्थ को एक साथ देखकर उसने मुस्कुरा कर कहा, वेलकम मिस्टर एंड मिसेज राजवंश, मैम ने मुझे आपको अटेंड करने के लिए कहा था। अंदर आने के बाद इशिका ने पार्थ से कहा, तुम जाकर अपना काम कर सकते हो। ठीक है, मैं यहीं हॉस्पिटल में ही हूँ, अकेले घर मत जाना, पार्थ ने काफ़ी केयरिंग वे में कहा। पास खड़ी जूनियर डॉक्टर उनकी बातें गौर से सुन रही थी, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी और उसने उसी अंदाज में कहा, देखकर अच्छा लगा कि इतना बिजी रहने के बाद भी आप अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी के एक नॉर्मल टेस्ट के चलते उनके साथ हॉस्पिटल आए हैं मिस्टर राजवंश। डॉक्टर को गलतफहमी हो गई थी कि इशिका और पार्थ हस्बैंड वाइफ हैं। इशिका ने तुरंत इसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ये मेरे हस्बैंड नहीं हैं, पार्थ मेरे हस्बैंड अभिमन्यु राजवंश का भाई है। ओ माई मिस्टेक, जिस तरह से मिस्टर राजवंश आपकी केयर कर रहे थे मैंने उन्हें आपका हस्बैंड समझ लिया, डॉक्टर ने तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए जवाब दिया। इशिका आगे कुछ नहीं बोली। वहीं पार्थ को एक अजीब सा एहसास हुआ जब डॉक्टर ने गलती से ही सही लेकिन उसे इशिका का हस्बैंड समझ लिया था। पार्थ ने एक नज़र इशिका की तरफ देखा, वो दिखने में खूबसूरत थी, इंटेलिजेंट थी और काफ़ी समझदार भी, हर इंसान अपने लाइफ पार्टनर में यही क्वालिटीज़ ढूंढता था। पार्थ खोई हुई निगाहों से इशिका की तरफ देख रहा था, तभी इशिका ने सिर हिलाकर कहा, कहाँ खो गए, तुम्हें जाना था। हाँ बस निकल रहा हूँ, पार्थ बोला और फिर वहाँ से तुरंत केबिन से बाहर आ गया था। इस वक्त उसका मन काफ़ी बेचैन हो रहा था। नहीं, मैं इशिका को उस तरह से देख भी कैसे सोच सकता हूँ, मेरे दिमाग में उसे लेकर ऐसे ख्याल कैसे आ सकते हैं। इकलौती वही सच है जिसके ज़रिए मैं अभिमन्यु को बर्बाद कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे इशिका को चोट पहुँचाना होगा। अगर मैं किसी भी तरीके से इशिका की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो मेरे प्लान पर पानी फिर सकता है। मुझे भाई की तरह मॉम को डिसअपॉइंट नहीं करना है। कंट्रोल योर इमोशंस पार्थ रायचंद, मत भूलो कि किस मकसद से तुम डॉक्टर अनामिका के पास जा रहे हो। फिलहाल मुझे कैसे भी करके अभिमन्यु को इस बात के लिए मनाना होगा कि वो इशिका के डॉक्टर अनामिका होने की पहचान को सबके सामने ले आए, तभी मेरा प्लेन ज्यादा सक्सेसफुल होगा। जब मेरी बनाई दवाइयों से लोग बीमार होकर मरने लगेंगे तब सीधा ब्लेम इशिका सिंघानिया यानी अभिमन्यु की पत्नी पर जाएगा। पार्थ मन ही मन बातें करते हुए चल रहा था। यही उसका प्लान था, इशिका को ट्रैप करके अभिमन्यु को बर्बाद करना, और वो किसी भी कीमत पर इसे बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। अब तक आप लोगों को लगता होगा कि इशिका ने अपनी पहचान सबके सामने रिवील क्यों नहीं की। उसने जो काम किया है या अपना जो भी नाम बनाया है उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ ही एक खतरा भी जुड़ जाता है। सोचो पार्थ जैसे इंसान उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। अब तक इशिका सेफ है क्योंकि उसने अपनी पहचान के बारे में रिवील नहीं किया, वो एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहती है। खैर फिलहाल के लिए इतना ही, अगले चैप्टर पर मिलते हैं, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।